आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय प्रकाश का अपवर्तन। ये कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का 14वां अध्याय है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने फोकस बिंदु के बारे में पढ़ा था। दो लेंस होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस बिंदु क्या क्या कहलाते हैं। पहले मैंने आप लोगों को परिभाषा पढ़ के बताई थी और फिर मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि उस परिभाषा का मतलब क्या होता है। और उसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी उत्तल लेंस के फोकस बिंदु के बारे में। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग और अच्छे से समझने के लिए आ जाओ पेज नंबर 154 पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चित्र 14.6, और चित्र 14.6 में भी जो दाईं ओर वाली चित्र है उसको आपको देखना है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो दाईं वाली चित्र है उसमें आपको दिखाई जा रही हैं कुछ समांतर रेखाएं दिखाई जा रही हैं। समांतर रेखाएं मतलब कि ऐसी रेखाएं हैं जो एक के नीचे एक हैं, एक के नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, और ये कोई भी आपस में कोई कोण नहीं बना रही हैं। और इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब हम लोग पिक्चर में समांतर रेखाएं बनाते हैं लेंस के पास तो उसका कुछ मीनिंग होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। उसका अर्थ ये होता है कि ये जो समांतर रेखाएं हैं ये प्रकाश को दर्शा रही हैं। ये क्या दर्शा रही हैं? ये लाइट दर्शा रही हैं। ऐसी लाइट है जो बहुत दूर से किसी लाइट वाली स्रोत से आ रही है। तो इस प्रकार की जब हम स्रोत से आ रही लाइट दिखाते हैं जो बहुत दूर से आ रही हो तो हम उसे समांतर रेखाओं से दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी उत्तल लेंस के ऊपर समांतर रेखाएं पड़ती हैं प्रकाश की, मतलब कि जब बहुत दूर से प्रकाश आ रहा होता है और वो उत्तल लेंस के ऊपर पड़ता है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरी साइड में वो एकत्रित हो जाता है, और जिस बिंदु पर वो एकत्रित होता है उसी को उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र 14.6 पेज नंबर 154 पर जो दाईं ओर वाला चित्र है उसमें उत्तल लेंस दिखाया गया है और उसमें आप लोगों को F से दर्शाया गया है कि फोकस बिंदु किसको कहते हैं। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु के बारे में बात करने के बाद हम लोगों ने अवतल लेंस के फोकस बिंदु के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं उसी को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 155 पर आ जाओ। यहाँ पर आप देखो चित्र 14.7, इसमें आप लोग देख सकते हो आपको एक अवतल लेंस दिखाया गया है और साथ में जैसे आप लोगों को उत्तल लेंस में दिखाया गया था समांतर किरणें, इसमें भी आप लोगों को समांतर किरणें दिखाई गई हैं। और समांतर किरणें क्या बता रही हैं, क्या दर्शा रही हैं? समांतर किरणें ये दर्शा रही हैं कि जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत दूर स्थित किसी स्रोत से आ रहा है, और जब ये बहुत दूर किसी स्थित स्रोत से प्रकाश पड़ता है किसके ऊपर, अवतल लेंस के ऊपर, तो वो क्या होता है उसमें अपवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जो फैली हुई ये प्रकाश की किरणें हैं जब हम इन्हें पीछे की ओर खींचते हैं तो हमें एक बिंदु ऐसा दिखाई देता है जहां पर ये जो फैली हुई प्रकाश की किरणें हैं ये मिलती हुई दिखाई देती हैं। और वो बिंदु जहां पर ये मिलती हुई दिखाई देती हैं अवतल लेंस से अपसारित होने के बाद, उसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 155 पर चित्र 14.7 में कि ये जो अवतल लेंस बनाया गया है इसमें आप लोगों को फोकस बिंदु F से दर्शाया गया है। और ये F से जो फोकस बिंदु दर्शाया गया है ये क्या है? ये वो बिंदु है जो हम लोगों को लगता है कि वो बिंदु है जहाँ पर उत्तल लेंस से अपसारित हुई जो रेखाएं हैं वो एकत्रित हो रही हैं जिस बिंदु पर, वहां पर हम लोगों को लगता है कि वो फोकस बिंदु होता है अवतल लेंस का। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फोकस दूरी क्या कहलाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंस से फोकस बिंदु तक का जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश केंद्र होता है वो लेंस के अंदर होता है और उसी बिंदु से लेकर आपको फोकस बिंदु तक की दूरी मापनी होती है और वही दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। उसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब मतलब कि इमेज जो बनती है, पिक्चर बनती है। जब भी कभी आप लोग मिरर में देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी खुद की भी मिरर में मतलब दर्पण में आपकी प्रतिबिंब बनती है। तो इसी तरीके से हम लोगों को लेंस के अलग अलग प्रतिबिंब कैसे बनती है लेंस से, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर हमने गतिविधि 6 की थी सबसे पहले, जो कि पेज नंबर 156 पर है। और इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने एक उत्तल लेंस लिया था या फिर आप आवर्धक लेंस भी ले सकते थे। मैंने आपको बताया था आवर्धक लेंस वो लेंस होता है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए। तो यहाँ पर इस गतिविधि में, गतिविधि 6 में आप लोग कोई से भी लेंस ले सकते हैं, या तो आप उत्तल लेंस ले सकते हैं या आवर्धक लेंस ले सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था। और साथ में मैंने आपको एक कागज लेने को कहा था, व्हाइट शीट लेने को कहा था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको ये लेंस और पेपर लेकर के किसी ऐसी जगह पर जाना था जहां सूर्य का बहुत अच्छा प्रकाश हो, और आपको जो उत्तल लेंस है हाथ में या फिर सेटअप में उसको कुछ इस तरीके से लगाना था ताकि सूर्य का सारा प्रकाश कागज पर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो। और वो कब केंद्रित होगा, जब वो प्रकाश उत्तल लेंस से पास होगा, उत्तल लेंस से गुजरेगा, तो वो कागज पर आपको क्या करना था, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करवाना था। और आपको तब तक सूर्य के प्रकाश को कागज के ऊपर एक बिंदु पर केंद्रित करवाना था जब तक कागज जलना ना शुरू हो जाए। जब आप बहुत देर तक सूर्य के प्रकाश को कागज के ऊपर एक बिंदु पर केंद्रित करवा रहे थे उत्तल लेंस की मदद से, तो क्या हो रहा था, कागज गर्म हो जा रहा था जिसकी वजह से उसमें आग लग जा रही थी। और मैंने आपको बताया था कि इस गतिविधि को करने से आप लोग कुछ बातें सीख पाते हैं। वो क्या क्या बातें थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जब भी आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, वो कैसी बनती है, वो ऐसी बनती है जो साइज में छोटी होती है। जैसे कि सूर्य जो है, हम लोग क्या कर रहे थे इस गतिविधि में, हमने सूर्य का प्रतिबिंब बनाया था और आपने कागज पर देखा था कि कागज के ऊपर एक बिंदु के ऊपर सूर्य का सारा प्रकाश केंद्रित हो गया था। तो जो आप लोगों को सूर्य का प्रकाश केंद्रित होता हुआ दिख रहा था कागज के ऊपर, वो क्या था, वो एक्चुअल में, हकीकत में सूर्य की इमेज थी, सूर्य की प्रतिबिंब थी जो आप लोगों को कागज के ऊपर दिखाई दे रही थी। और उत्तल लेंस की मदद से आप लोग इस तरीके का प्रतिबिंब बना सकते हैं जो साइज में छोटा होता है। और साइज में छोटा प्रतिबिंब सिर्फ तभी बनेगा जब आपका जो प्रकाश का स्रोत हो वो बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो। अगर वो बहुत पास में स्थित होगा तब छोटे साइज का नहीं बनता है ये इमेज जो होती है, प्रतिबिंब जो होती है। ये छोटी साइज की प्रतिबिंब उत्तल लेंस से केवल तभी बनती है जब जो प्रकाश का स्रोत होता है वो बहुत ज्यादा दूरी पर होता है। जैसे सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है लेंस से, इसीलिए जब उसकी प्रतिबिंब बनती है तो वो बहुत छोटी होती है साइज में। उसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने जो इस गतिविधि के जरिए समझी थी वो ये थी कि उत्तल लेंस की मदद से जब प्रतिबिंब आप बनाते हैं तो आप उस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। यहाँ पर आपने कागज के ऊपर प्रतिबिंब बना दिया था सूर्य का, तो इसी प्रकार से जब भी आप उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और उससे प्रतिबिंब बनाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। और क्योंकि आप प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार पा रहे हैं इसीलिए जो प्रतिबिंब होगी ये वास्तविक प्रतिबिंब होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी जब शक्ल देखते हैं दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, शीशे के अंदर, तो वहां पर वो जो प्रतिबिंब होता है उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसलिए उस प्रतिबिंब को आप वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे जो प्रतिबिंब बनती है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और इसीलिए इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक और खास बात होती है जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं उनकी, वो ये होती है कि जो भी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे होते हैं साइज में, आकार में वो उल्टे होते हैं। यहाँ पर आपको इस गतिविधि के जरिए ये बात नहीं समझ में आई होगी, क्यों, क्योंकि सूर्य जो होता है उसका आकार गोल होता है, वो आपको हर डायरेक्शन से, हर दिशा से सेम ही लगेगा। लेकिन ये मैंने आप लोगों को बता दिया था आपकी जानकारी के लिए, जो आप लोगों को अगली गतिविधि में, गतिविधि 7 में क्लियर हो गया था कि जब उत्तल लेंस से इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, तो वो उल्टी होती है आकार में। तो हमने कहा था कि इन सभी बातों को, सभी के सभी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मिला करके हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी वस्तु को हम अनंत स्थान पर रख देते हैं, मतलब लेंस से बहुत ज़्यादा दूर स्थान पर रख देते हैं, तो उससे जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है उस वस्तु की, वो कैसी बनती है? वो वास्तविक बनती है, उल्टी होती है और अत्यंत छोटी होती है, और वो फोकस बिंदु के ऊपर बनती है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्योंकि जब कोई वस्तु जो स्रोत है प्रकाश का वो अनंत स्थान पर है, मतलब लेंस से बहुत ज़्यादा दूर स्थान पर रखा हुआ है, और उससे प्रतिबिंब जहाँ पर बनती है वो फोकस बिंदु पर बन रही है, इसीलिए आप लोग जब भी फोकस बिंदु के ऊपर इमेज बन रही है तो आप उससे दूरी माप सकते हैं। लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को आप जब माप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा फोकस दूरी का। गतिविधि 6 के बाद हम लोगों ने बात की थी गतिविधि 7 के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था गतिविधि 7 के लिए आपको क्या करना था, आपको एक मेज पर एक सीधी लंबी रेखा खींचनी थी। उसके बाद सीधी लंबी रेखा खींचने के बाद आप लोगों को उसका बिल्कुल बीच वाला पार्ट, जो आपने लंबी रेखा खींची है उसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट चुनना था, बिल्कुल आधा हो जाए ऐसे आपको बिंदु चुनना था, और उस बिंदु पर आपको लेंस को लगा देना था। कौन सा लेंस लगाना था आपको? उत्तल लेंस लगाना था, और जहां पर आपने उत्तल लेंस को रखा उस केंद्र को आपको ओ से मार्क कर देना था, ओ से आपको उसको दर्शाना था। और क्योंकि आप लोगों ने गतिविधि 6 के माध्यम से ये समझ लिया था कि आप किसी उत्तल लेंस का फोकस कैसे पता कर सकते हैं, फोकस दूरी कैसे पता कर सकते हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको उत्तल लेंस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उसका फोकस दूरी पहले से पता है, जब आप गतिविधि 7 कर रहे होंगे। और गतिविधि 7 के लिए आपको क्या करना है, आपको फोकस दूरी पहले से पता होनी चाहिए लेंस की, और उसी आधार पर जहां पर आपने लेंस को रखा हुआ है वहां से दोनों ओर आपको फोकस दूरी माप के दोनों ओर आपको F से उसको दर्शाना था। उसके बाद क्योंकि आप लोगों को पहले ही फोकस दूरी पता है तो आपने F से दोनों साइड फोकस दूरी दर्शा दी, और आपको क्या करना था, आपको फोकस दूरी का दुगना करना था, और उसको आपको दर्शाना था 2F से, और जो लेंस आपने रखा हुआ है मेज के बीचों बीच उससे दोनों साइड, उसके दोनों साइड जो जगह है वहां पर आपको 2F दूरी माप करके उसको भी आपको दर्शाना था 2F से दोनों साइड में लेंस के। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 156 पर चित्र 14.9 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरीके से जो यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है इसी तरीके से आपको बनाना था कि मेज के बीचों बीच आपको लेंस रखना था और उसको दर्शाना था ओ से, और उसके बाद लेंस के दोनों ओर आपको फोकस दूरी माप के F से दर्शाना था उसको, और उसके बाद लेंस के दोनों साइड 2F दूरी माप करके आपको किससे दर्शाना था, 2F से दर्शाना था। 2F कुछ और नहीं है, 2F है जो आपने फोकस दूरी मापी हुई है उसका दुगना दूरी। उसके बाद आप लोगों को एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी थी, और उस जलती हुई मोमबत्ती को आप लोगों को कहाँ रखना था, आपको रखना था लेंस के बाईं ओर, 2F से थोड़ा सा और बाईं ओर आप लोगों को रखना था, थोड़ा सा दूर रखना था, और उस मोमबत्ती को आपको जला देना था। और जो लेंस रखा है उसकी दाईं ओर आपको क्या लगाना था, उसकी दाईं ओर आपको लगाना था एक वाइट पेपर जो कि आपने एक गत्ते के ऊपर लगाया था जिसकी लंबाई थी करीब 15 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई थी करीब 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार के गत्ते की साइज को आपको ले लेना था और उसके ऊपर आपको एक वाइट पेपर लगा देना था, कागज लगा देना था, और उसको आपको लेंस के दाईं ओर इस तरीके से रखना था कि उसको रखते ही आपको मोमबत्ती जो आपने बाईं ओर रखी हुई है लेंस की उसकी प्रतिबिंब आपको कागज के ऊपर जैसे ही क्लियर नजर आने लग जाएगी ऐसी जगह पर आपको उस स्क्रीन को यानी कि उस पेपर को रखना था। और इस गतिविधि की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग मोमबत्ती को रखेंगे बाईं साइड लेंस के 2F के थोड़ा और बाईं साइड रखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोजीशन देख सकते हैं चित्र 14.9 पेज नंबर 156 पर कि मोमबत्ती को 2F के थोड़ा सा बाईं ओर रखा गया है। तो ऐसे जब आप लोग रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, जब आप 2F से थोड़ा और बाईं ओर रखते हैं तो उसकी इमेज जो बनती है, प्रतिबिंब जो बनती है वो लेंस के दाईं ओर बनती है F और 2F के बीच में। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपने स्क्रीन तैयार किया था, जो आपने पेपर तैयार किया था उसको जब आप F और 2F के बीच में आगे पीछे खिसकाएंगे तो आप लोगों को मोमबत्ती की एक क्लियर इमेज नजर आ जाएगी। और क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये गतिविधि करके कि आपने जो मोमबत्ती रखी हुई थी उसकी क्लियर इमेज मतलब कि प्रतिबिंब आप लोगों को मिल गई थी कहाँ पर, F और 2F के बीच में दाईं ओर लेंस की, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पेपर के ऊपर मतलब कि जो आपने शीट ली हुई थी, वाइट शीट ली हुई थी, उसके ऊपर प्रतिबिंब आ गई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब को आप पर्दे के ऊपर उतार पा रहे थे, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो होती है वो प्रतिबिंब ऐसा बनाती है जो वास्तविक होता है। और इस गतिविधि में भी आप लोगों ने एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है। और मैंने आपको ये बताया था कि अब आप क्या कर सकते थे, जो मोमबत्ती आपने रखी हुई थी उसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते थे, विभिन्न स्थितियों पर रख के आप ये देख सकते थे कि उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। मोमबत्ती को अलग अलग जगहों पर रखने पर जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो कहाँ पर बनती है। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि यहाँ पर पेज नंबर 157 पर सारणी दी गई है, सारणी 14.1, इसमें बताया गया है कि वस्तु जो है उसके कौन कौन से स्थान है जहां पर आप मोमबत्ती को रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्थान है अनंत पर। अनंत पर से मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा दूरी पर रखते हैं तब, तो आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने पहले ही किया हुआ है। सूर्य को लेकर के आपने ये गतिविधि की थी और उससे आप लोगों को पता चल गया था कि जब भी कोई वस्तु अनंत स्थान पर होती है, मतलब लेंस से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, तो उसकी प्रतिबिंब बनती है एफ पर, यानी कि फोकस बिंदु पर बनती है, और जो प्रतिबिंब बनती है उसका आकार बहुत छोटा होता है और उल्टा होता है, और क्योंकि उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं इसीलिए वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। तो बच्चों गतिविधि 7 तक तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसी के ऊपर आधारित है आज की थोड़ी बहुत बातें भी, इसलिए हम लोग पहले वो बातें खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला विषय चुनेंगे। अगले विषय में आप लोगों को अगली गतिविधि करनी है जो कि है गतिविधि 8। तो यहाँ पर आपको अब आज की क्लास में क्या करना है, अब आज की क्लास में हमें सबसे पहले सारणी 14.1 के ऊपर कुछ चर्चा कर लेनी है। और इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि जो मोमबत्ती आपने रखी थी गतिविधि 7 में, उसको अगर आप अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनती है और किस प्रकार की बनती है। तो पहला तो हो गया अनंत पर, जो आपने पहले ही समझ लिया है कि वो फोकस पर बनती है, प्रतिबिंब जब बनती है, अगर कोई वस्तु अनंत स्थान पर रखा हो तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, छोटी होती है और वास्तविक होती है और उल्टी होती है। उसके बाद अगला स्थान है कि अगर हम 2F से थोड़ी दूरी पर रख दें किसी वस्तु को, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उस वस्तु की इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनती है F और 2F के बीच में। ये भी आप लोग कर चुके हैं, ये आप लोग गतिविधि 7 में कर चुके हैं। इसमें आप लोगों ने मोमबत्ती को जब 2F से थोड़ी दूरी पर रखा था तो आपने ये देखा था कि उसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो बनी थी वो तब बनी थी जब आपने पर्दे को F या 2F के बीच में रखा था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब भी कभी किसी वस्तु को रखा जाता है 2F से थोड़ी दूरी पर, तो उसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनती है F और 2F के बीच में, और जो वो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार छोटा होता है, उल्टा होता है, और क्योंकि आप उसको पर्दे पर उतार पा रहे हैं उस प्रतिबिंब को, इसलिए उस प्रतिबिंब को हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। उसके बाद अगली स्थिति जो होगी वस्तु की वो होगी 2F के ऊपर, जो आपने 2F दूरी मापी हुई थी लेंस से, उस पर आपको जब उसी के ऊपर, बिल्कुल 2F के ऊपर जब आप किसी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनती है वो दूसरी साइड, लेंस के दूसरी साइड 2F पर बनेगी। और वो जो इमेज बनेगी, वो जो प्रतिबिंब बनेगी, वो कैसी होगी, वो साइज में यानी कि आकार में बराबर होती है बिल्कुल उस वस्तु के ही, और उल्टी होती है। और साथ में क्योंकि आप उस इमेज को, प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार पा रहे हैं, इसीलिए वो इमेज जो होती है वो वास्तविक यानी कि रियल इमेज होती है। उसके बाद अगली पोजीशन है, अगली स्थिति है कि F और 2F के बीच में जब आप किसी वस्तु को रखते हैं एक साइड पर, लेंस के एक साइड पर जब आप किसी वस्तु को F और 2F के बीच में रखते हैं, तो उसकी जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, वो दूसरी साइड लेंस के 2F के दूर बनती है, थोड़ा सा 2F से परे बनती है, 2F से दूर होकर बनती है। और इस प्रकार की जो इमेज होती है, इस प्रकार की जो प्रतिबिंब होती है, वो साइज में बड़ी होती है और उल्टी होती है, और क्योंकि आप इस इमेज को, प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार पा रहे हैं, इसीलिए इस इमेज को आप वास्तविक इमेज कहेंगे। उसके बाद अगला पोजीशन है कि अगर आप किसी वस्तु को F के ऊपर रखते हैं, मान लो जो आपने लेंस रखा हुआ है उसके एक साइड F के ऊपर आप किसी वस्तु को रखेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी, और इस प्रकार की जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब होती है वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, अत्यंत बड़ी होती है, उल्टी होती है, और इसे भी पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो ये भी वास्तविक होती है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पोजीशन दी गई है कि जब भी आप किसी वस्तु को लेंस और F के बीच में रखते हैं, जो अपने लेंस की पोजीशन मार्क की हुई है ओ से गतिविधि सात में, वहां पर उस पोजीशन से आप फोकस और लेंस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो पिक्चर बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी अनंत और लेंस के बीच में, कहीं पर भी बन सकती है, और वो साइज में बड़ी होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। और क्योंकि ये आभासी होगी, इसलिए आप लोग इस बार अगर गतिविधि सात के माध्यम से पता करना पाएंगे, पता करना चाहते होंगे कि आप कैसे जो इमेज है वो देख पाए, तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आभासी इमेज है, मतलब पर्दे पर नहीं उतारी जा सकती। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गतिविधि आठ करनी है, जो कि पेज नंबर 157 पर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो लेंस आपने लिया हुआ था, जिससे आप लोग गतिविधि सात कर रहे थे, वही लेंस आप लोगों को ले लेना है। और आपकी जो नोटबुक है या फिर जो बुक है आपके पास, जिसमें अगर छोटे छोटे अक्षर लिखे हों, उसके पास उस लेंस को ले जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 14.9 पेज नंबर 157 की, इसमें जो अक्षर है उसके पास लेंस को ले जाया गया है। और जैसे ही आप उस लेंस को छोटे छोटे अक्षरों के पास लेकर जाएंगे, तो आप ये देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि जो अक्षर है वो आपको बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो इमेज होती है, क्योंकि इस इमेज को आप पर्दे पर नहीं उतार पाएंगे, इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार पाएंगे, इसलिए इस प्रकार की प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आप लोगों ने जब गतिविधि सात की थी, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पोजीशन है, जो दूरी है, फोकस दूरी है, वो कुछ ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लेंस को फोकस दूरी से कम दूरी पर ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास, मतलब कि जो अक्षर है उसके पास आप रख रहे हैं लेंस को, मतलब कि आप कहाँ रख रहे हैं, जो अक्षर है वो इस बार वस्तु का काम कर रहे हैं, और इस वस्तु को आप फोकस दूरी और लेंस के बीच के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप लोगों को जो इमेज मिलती है, जो आप लोगों को प्रतिबिंब मिलती है, वो कैसी मिलती है, वो आभासी होती है और साइज में बहुत बड़ी होती है, सीधी होती है, जैसे अक्षर लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं इस लेंस की मदद से। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अक्षर है वो उल्टे नहीं है। और इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो सीधी होती है, साइज में बड़ी होती है, आभासी होती है, और उसकी जो स्थिति होती है वो होती है अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी। तो यहाँ पर आपको इस गतिविधि से एक और बात समझ में आ रही होगी, गतिविधि आठ से, कि केवल एक ही ऐसी पोजीशन है, एक ही ऐसी स्थिति है जब हम लोगों को उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और वो कौन सी स्थिति है, वो स्थिति है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को लेंस और एफ के बीच में रखते हैं, तभी हमें केवल उस वस्तु की आभासी प्रतिबिंब मिलती है। बाकी हर एक स्थिति पर हम लोगों को लेंस से, उत्तल लेंस से जब भी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है। उसके बाद अगला हम लोगों को पढ़ना है अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तो आप लोगों ने जो गतिविधि की थी, गतिविधि सात, अगर आप उसी को करेंगे, उसी को दोहराएंगे प्रक्रिया को, लेकिन वहां पर अब उत्तल लेंस की जगह पर आपको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो आप ये पाएंगे कि जब भी कभी आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और उससे प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी भी पर्दे पर नहीं आता। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो कैसे प्रतिबिंब होते हैं, वो आभासी होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और हमेशा सीधे होते हैं। और इसीलिए जब आप अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनवाना चाह रहे होंगे, तो आप उसको सीधे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आंखों के पास रखकर अवतल लेंस को आप उससे इमेज बनवा सकते हैं। कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर आप अवतल लेंस को लगाकर देखेंगे और अपनी आंखों से डायरेक्ट उसे देखेंगे, तो आप लोगों को उसकी इमेज दिख जाएगी। कैसी इमेज दिखेगी आपको, इमेज दिखेगी आभासी, सीधी और छोटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 158 पर चित्र 14.10, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस का जब इस्तेमाल किया जाता है, उसी अक्षर के ऊपर अगर आप अवतल लेंस को रखेंगे उत्तल लेंस की जगह पर, तो यहाँ पर जब इमेज बनती है तो कैसी बनती है, प्रतिबिंब कैसी बनती है, बहुत ही छोटी होती है, साइज में सीधी होती है और आभासी होती है। क्यों आभासी क्यों होती है, क्योंकि आप इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है कि लेंस के अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग होते हैं, किन किन उपकरणों में किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रयोग मैंने आप लोगों को इसके बारे में स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी चर्चा की थी, कि दृष्टि के सुधार के लिए, जो दृष्टि के दोष होते हैं, मतलब किसी किसी को कम दिखता है, किसी को दूर का बहुत कम दिखता है या किसी को पास का कम दिखता है, उसी आधार पर लोगों को लेंस के इस्तेमाल से उनके दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है काफी हद तक। तो जो चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें दोनों प्रकार के लेंस का आप उपयोग कर सकते हैं, मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, अवतल लेंस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग लेंस का उपयोग किया जा सकता है। और कभी कभी जो बूढ़े लोग होते हैं उनके आंखों में जो चश्मा लगा होता है उसमें दोनों ही लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूर का भी बहुत कम दिखने लग जाता है, पास का भी बहुत कम दिखने लग जाता है, तो इसी वजह से उनके जो लेंस बनाए जाते हैं, उनके जो चश्मे बनाए जाते हैं, उसमें दोनों प्रकार के लेंस का भी उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ अलग अलग प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उन लोगों को दूर का जो वस्तु होता है वो साफ नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो ऐसी प्रकार के जो लोग होते हैं उनको आंख के निकट दृष्टि दोष से कहा जा सकता है कि वो आंख के निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब कि उनको पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और ऐसे लोगों को क्या करना होता है, ऐसे लोगों को अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना होता है और इससे इनकी काफी हद तक दृष्टि दोष कम हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि वे लोग जो होते हैं उनकी आंखें दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होती हैं, मतलब कि उनको पास का नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट, लेकिन दूर का दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना होता है, ऐसे लोगों को उत्तल लेंस से बने चश्मों का उपयोग करना होता है, और उत्तल लेंस के उपयोग से इन लोगों की जो दृष्टि दोष होती है काफी हद तक इसका निवारण हो जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पास का भी काफी बार नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है सेम ही टाइम पर, तो उनके जो चश्मे होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि चश्मे का जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है और नीचे वाला जो भाग होता है उसमें उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। क्योंकि पास का हमें नहीं दिख रहा है इसका मतलब हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर छोटे अक्षरों को देखने में दिक्कत आ रही होगी, तो इसी आधार पर चश्मे का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो बना दिया जाता है उत्तल लेंस से, और दूर की चीजें देखने के लिए चश्मे का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको अवतल लेंस से बना दिया जाता है। ऐसे लोगों के चश्मे जिनको दूर का भी नहीं दिख रहा है पास का भी नहीं दिख रहा है उसी में उन्हीं प्रकार के जो चश्मे होते हैं उसी में इस प्रकार का सेटअप होता है। तो ये तो बात हो गई चश्मों के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी ये भी एक प्रकार के लेंस होते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए, या फिर कभी आप लोग बनवाने गए होंगे अपनी घड़ी वगैरह तो आपने देखा होगा कि घड़ी के जो उपकरण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पुर्जे होते हैं घड़ी के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए जो घड़ी ठीक करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन लोगों को घड़ी के जो पुर्जे हैं वो थोड़े बड़े आकार में दिखाई देने लग जाएं और घड़ी को ठीक करने में उनको हेल्प हो। तो जो लेंस आप लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे चीजों को बड़ा करके देखने के लिए इसी लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल अक्षरों को बड़ा करने के लिए भी किया जा सकता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वो एक्चुअल में हकीकत में उत्तल लेंस ही होते हैं, और ये ऐसे उत्तल लेंस होते हैं जिनकी फोकस दूरी थोड़ी कम होती है, और जिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी थोड़ी कम होती है इनका इस्तेमाल हम सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में कर सकते हैं, और सरल सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप लोगों को छोटी वस्तु जो होती है वो बड़ी करके आप उनको देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। आप लोगों ने कभी अपने साइंस लैब में देखा होगा, वहां पर आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट देखा होगा, इसी को आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और इसकी मदद से आप लोगों की जो स्लाइड वगैरह रखी होती है लैब में उसे आप बहुत बड़ा करके देख पाते हैं। स्लाइड को अगर आप सीधे सीधे अपनी आंखों से देखते हैं तो आप लोगों को कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप उसी स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगाकर देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें आसानी से दिखने लगती हैं, बहुत बड़ी होकर के दिखने लगती हैं। तो ये जो प्रकार का उपकरण है जिसके जरिए आप लोग बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स को बड़ा करके देख पाते हैं इसी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और दिखने में ये कैसा होता है, यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 158 पर देख सकते हैं, चित्र 14.11 पर, इसमें आप लोगों को दिखाया गया है एक पिक्चर, इसमें आप लोगों को इस पिक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस तरीके का दिखता है ये बताया गया है। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ये भी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करने में हम लोगों को मदद करता है और हम लोग छोटी चीजों को बड़ा करके देख पाते हैं। और इसी तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए मदद करता है, लेकिन अंतर होता है दोनों में। दोनों में अंतर क्या होता है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो आप लोगों को छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखा पाता है। ऐसा क्यों कर पाता है? ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं, दो स्थितियों पर दो लेंस लगे होते हैं। एक जो लेंस होता है जो आप लोग स्लाइड के पास लगाते हो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं या फिर अभिदृश्यक कहते हैं, और वो लेंस जो आपकी आंखों के पास लगा होता है जिसके जरिए आप लोग देखते हो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह पर जो लेंस लगा होता है उसे आईपीस लेंस कहते हैं या फिर नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। और क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो दो लेंस होते हैं, इसीलिए जब भी आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोई चीज देख रहे होंगे तो आपको उसकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होकर दिखाई देती है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो थोड़ा कम पावरफुल होता है। आप लोगों ने कभी स्लाइड बनाकर देखा होगा प्याज की झिल्ली का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मदद से, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं। अपनी टीचर की मदद से आप लोगों को एक स्लाइड बनानी है प्याज की झिल्ली की, और उसको आपको क्या करना है, पहले आप लोगों को उसको सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है और दूसरी बार आप लोगों को उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। दोनों में आप लोगों को अंतर खुद ही पता चल जाएगा कि जब आप उस स्लाइड को सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे होंगे तो आपको उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जब आप उस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको उसकी साइज कई गुना ज्यादा बड़ी होकर दिखाई देगी और आपको स्लाइड का जो पिक्चर है अंदर का वो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो वस्तु की इमेज कई गुना बढ़ा देता है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दूरबीन के बारे में या फिर दूरदर्शक के बारे में। तो जो दूरबीन होते हैं इनमें भी लेंस लगी होती हैं। कौन सी लेंस इनमें लगी होती है? इनमें भी उत्तल लेंस ही लगी होती है, दो उत्तल लेंस लगी होती हैं, जो दूसरी साइड लगा होता है जहां पर जिस जगह से आप लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं उसको आईपीस कहते हैं, और जो आगे वाली लेंस होती है जिसकी सहायता से आप वस्तु को देख रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं यानी कि अभिदृश्यक कहते हैं, और जो आईपीस होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। तो दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं दूरबीन में भी, और दूरबीन की सहायता से आप लोगों को पता ही होगा आप क्या करते हैं, दूर की चीजों को बहुत आसानी से आप देख पाते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों दूरबीन के बारे में, और आज की क्लास को मैं इसी के साथ यहीं पर खत्म कर रही हूँ। बाकी की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो बातें आज मैंने पढ़ाई हैं उसको आपको खुद से एक बार रिवाइज कर लेना है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है, गतिविधियों को कर लेना है। और आप लोगों को मैं मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।